मैं कल से मछली बेचने पूरब में जाऊं? गौतम्मा के इस प्रश्न का पलई ने झट से कोई उत्तर नहीं दिया। करुतम्मा ने बतलाया कि जाने से क्या क्या फायदा होंगे और कहा कि उसे मंजूर हो तभी वह जाएगी। पलई ने कहा, तब जाओ। 2 दिन में करुतम्मा ने एक टोकरी खरीद ली। अगले दिन जब नावें किनारे लगीं तब वह बेचने के लिए मछली लेने समुद्र तट पर पहुंची। शादी के बाद इतनी जल्दी लड़की तट पर आ जाए यह किसी को ठीक लगने वाली बात नहीं थी। कोचू ने पूछा, तू क्यों इस काम के लिए आई है री? मैं भी तो इस तट की मल्लाहिन हूँ, गौतम्मा ने जवाब दिया। फिर भी उसका तट पर जाना उस दिन लोगों के बीच चर्चा का विषय हो गया। गौतम्मा को उस काम का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे काम पर जाना पड़ेगा या उसने कभी सोचा था? कौन जाने। उसकी माँ ने यह काम किया था जरूर, लेकिन चक्की ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि उसकी बेटी को भी सिर पर भारी टोकरी लेकर बेचने के लिए घूमना पड़ेगा। नावों के किनारे लगने पर करुतम्मा भी दूसरी औरतों के साथ आगे बढ़ी। एक व्यापारी ने एक नाव से थोक माल ले लिया। करुतम्मा और 3-4 औरतों ने मिलकर उस माल को खरीद लिया। दूसरी औरतें करुतम्मा से आगे निकल गईं। उन्हें अभ्यास था। करुतम्मा भारी टोकरी सिर पर लेकर दौड़ नहीं सकती थी, वह सबसे पीछे पड़ गई। कभी कभी 3-4 मील दूर तक जाना पड़ता था। करुतम्मा को न जगह से परिचय था न वहाँ के लोगों से। आगे जाने वाली सब स्त्रियाँ घरों में जा चुकी थीं। नया रास्ता ढूंढ कर जाना उसे मालूम नहीं था। सब घरों में उसने पूछा, कहीं से जवाब मिला कि खरीद चुके हैं, कहीं दाम नहीं पटा तो कहीं मछली ही पसंद नहीं आई। काफी दूर तक ढोने पर भी माल नहीं बिका। घाटे पर ही भी बेच देने का उसका मन हुआ। लौटा कर कैसे ले जाती? इस तरह अंत में घाटे पर बेच कर वह थकी मांदी घर लौटी। उस दिन एक संतोष की बात यह हुई कि वह कुछ घरों में आगे माल देने की बात पक्की कर आई। पलनी बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। करुतम्मा बहुत थकी गई थी। वास्तव में उससे चला ही नहीं जाता था। उसने आशा की थी कि उसकी दशा देखकर पलनी पसीजेगा और पूछेगा, कम से कम इतना तो पूछेगा कि कितना मिला। लेकिन पलई ने कुछ भी नहीं पूछा। इस व्यवहार के खिलाफ वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह उसकी पत्नी थी। हक की बात छोड़ भी दी जाए तो भी उसका कुछ कर्तव्य तो था ही। उसने पूछा, खाना खाया? पलई ने जवाब दिया, हाँ। नहाने के बाद बदलने के लिए उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। वह गीला कपड़ा ही पहने रही। उसने बिना पूछे ही उस दिन का अपना अनुभव सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि उस दिन घाटा होने पर भी आगे की बिक्री की बात वह तय करके आई है। एक बात और वह कहना चाहती है। उसने पलनी से कहा कि वह किसी कम्बा जाल वाले के हाथ उसे काम में लगा दे। पलई ने जवाब दिया, मुझसे यह सब काम नहीं होगा। दूसरे दिन बटोर में आइला मछली मिली। गौतम्मा के पास जितना पैसा था उतने से उसने आइला खरीद ली। वह उस दिन भी सबके पीछे गई। दूसरी औरतों ने एक आने में 2 मछली की दर से बेची। करुतम्मा ने 2 आने में 5 की दर से बेची। लाभ कम होने पर भी उसे कुछ घरों में रोज मछली देने की सुविधा हो गई। उन घर वालों ने नई मछली वाली के बारे में अच्छा मत प्रकट किया। 3-4 दिन के बाद तट पर एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। मछली बेचने जाने वाली औरतें मिलकर करुतम्मा की शिकायत करने लगीं। करुतम्मा किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। वह खड़ी खड़ी रोती रही। एक ने गुस्से में कहा, वहाँ किसी मुसलमान के साथ रहती थी, अब यहाँ तट का सर्वनाश करने आई है। एक दूसरी ने कहा, उसे काम तो मिलेगा ही, सब घरों के मर्द लोग उसी से मछली खरीदने को कहेंगे। यह तो ऐसे ही सज धज कर घूमने और मर्दों को फंसाने वाली ही है। गौतम्मा के सामने यह सब कहा गया सुनकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कान बंद हो गए। उसका पक्ष लेने वाला इस संसार में कोई नहीं था, किसी ने भी उसकी वास्तविक स्थिति नहीं समझी। दूसरी मल्लाहिनों की तरह काम करके जीने का भी उसे हक नहीं था। समुद्र से लौटने पर पलई ने उस दिन उससे यह भी नहीं पूछा कि उस दिन वह काम पर गई थी कि नहीं। उसने गौतम्मा की तरफ सिर्फ देखा, रुआसा चेहरा देखना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उन दिनों वह उस तरह का ही चेहरा देखा करता था, लेकिन उस दिन चेहरा रोज से ज़्यादा कुम्हलाया हुआ था। पलई ने इसका कारण पूछा। करुतम्मा ने कहा, कुछ नहीं, बेचारी और क्या कहती, पूरा किस्सा कैसे सुनाती। क्या त्रिकुन्न पुषा की औरतों में से किसी से भी कोई गलती कभी नहीं हुई है? निरकुन्नम तट पर तो औरतें जब आपस में झगड़ती थीं तो एक दूसरे की कहानी भी सुना देती थीं। लगता था कि सबकी अपनी अपनी कहानी थी। यहाँ किसी के बारे में भी गौतम्मा को कुछ नहीं मालूम हुआ। यदि कुछ मालूम हो जाता तो वो अभी कुछ सुनाती? क्यों नहीं सुनाती? उसने खुद क्या अपराध किया था? क्या लड़के लड़कियां यहाँ पर साथ साथ नहीं खेलते? उसने लड़के लड़कियों को सीप चुनते और छोटी मछलियाँ बटोरते देखा है। यहाँ की औरतें भी तो बचपन बिताकर ही यहाँ बड़ी हुई हैं। गौतम्मा के मन में हुआ कि कैसे भी वह इन लोगों की कहानियाँ जान जाए। क्या यहाँ की हवा में भी किसी पुरानी स्त्री की प्रेम कहानी व्याप्त नहीं है? क्या किसी अपराधिनी मल्लाहिन की आत्मा यहाँ भी चांदनी में मर्राती नहीं फिरती? ऐसी कहानी से संबंधित कोई गाना किसी को गाते उसने नहीं सुना है। करुतम्मा ने मछली बेचने जाने का काम छोड़ दिया, लेकिन एक दूसरा काम उसने शुरू किया, मछली खरीदना और उनमें नमक लगाकर सुखा कर रखना। जब मछली नहीं मिलेगी तब इसका अच्छा दाम वसूल हो जाएगा, नहीं तो थोक माल लेने वालों के हाथ भी बेच सकती है। इस तरह करुतम्मा वहाँ अपना एक अलग जीवन बिताने लगी। वास्तव में उसका हमेशा ही अपना एक निजी जीवन रहा है, जिसमें वह अकेले ही रहती आई है। यहाँ भी बिना किसी से दोस्ती लगाए, बिना किसी से बातें किए उसके अनेक दिन बीते हैं। पलनी की भी वह बात थी। वह रोज़ काम पर जाता था, पर उसका जोश और उत्साह खत्म हो गया था। उसके साथी थे, लेकिन वह सबसे अलग रहता था। पति पत्नी का जीवन इस तरह एक सतह पर आ गया। शुरू के सब आवेश खत्म हो गए। यदि आवेश स्वाभाविक रूप से ठंडे हो जाएं, तो जीवन पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों की बातें ऐसी नहीं हुई। प्रज्वलित होता हुआ आवेश एकाएक ठंडा हो गया। जीवन की बन रही योजनाएं अचानक भंग हो गईं। दोनों के बीच सिर्फ एक भाव शून्य पति पत्नी का संबंध रह गया। ऐसी व्यवस्था से दोनों संतुष्ट थे कि नहीं, यह कोई नहीं कह सकता। तट पर करुतम्मा जैसे बातचीत का विषय बन गई, वैसी ही पलनी भी बातचीत का विषय बन गया। पलनी जब कहीं जाता तब उसे लगता कि उसके पीछे लोग आपस में उसके बारे में कुछ कानाफूसी करते रहते हैं। 4-5 महीने पहले जब वह बिल्कुल स्वतंत्र था, तब उसे देखकर कोई भी उससे प्रसन्न भाव से कुशल मंगल पूछे बिना नहीं रहता था। उसके बारे में सबका अच्छा मत था, लेकिन आज जहाँ भी वह जाता है लोगों को कुछ न कुछ छिपाकर उसके बारे में बोलने के लिए रहता है। कैसा परिवर्तन हो गया। पलई ने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उस दिन पागल की तरह बीच समुद्र में नाव ले जाने के बाद से उसको पतवार नहीं लेने दी गई। सबके मन में एक डर समा गया कि पलनी को भ्रम हो गया है और करुतम्मा के अच्छा आचरण वाली न होने से पलनी के साथ समुद्र में जाना खतरनाक होगा। करुतम्मा के पक्ष में एक शब्द भी कहने वाला कोई नहीं था। पलनी की भी वही स्थिति थी। कोई उन दोनों के बारे में कुछ भी कह सकता था, उसका प्रतिवाद करने वाला कोई नहीं था। जिस नाव पर पलनी काम के लिए जाता था वह कुंजन जाल वाले की थी। कुंजन पुराने जमाने से ही नाव का मालिक रहा है। आज उसकी स्थिति गिरी हुई है। वह नाव ही उसके निर्वाह का एकमात्र आधार थी। उसका घर और जमीन आदि सब दूसरों के हाथ में चले गए हैं। आज उसकी नाव और जाल नष्ट हो जाएं तो उसके लिए भूखों मरने की नौबत आ जाए। मजदूरी वह कर नहीं सकता था, ऊपर से वह बूढ़ा भी हो गया था। उसके कान में भी कौतम्मा की कहानी पहुंची। उसको बड़ा धक्का लगा। एक भ्रष्टा नारी का पति रोज उसकी नाव में जाता था। जब तक नाव नहीं लौटती तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। समुद्र में क्या नहीं हो सकता, सब कुछ नष्ट हो सकता है। कुंजन ने बातें करने के लिए पलनी को छोड़कर बाकी सब मछुआरों को बुलाया। सबको वह डर था। औरतें उस डर को रोज बढ़ाती और बचाव के लिए समुद्र माता का नाम लेती थीं। ऐसी परिस्थिति में जब कुंजन ने सबको बुलाया तब उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। कुमारन ने कहा, आपको अपनी नाव नष्ट होने का डर है, लेकिन हम लोगों को अपने जीवन का ही डर है। हे मालिक, यदि कुछ हो जाए तो 12 परिवार नष्ट हो जाएंगे। वेलायुधन ने भी इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा। उसको भी शायद भीतर ही भीतर डर हो गया था। कुंजन ने कहा, हाँ हाँ तुम ठीक ही कहते हो, समुद्र की बात पक्की है। इस बात के बारे में किसी को भी संदेह नहीं था। जमाना बदलता है, लेकिन समुद्र के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुमारन ने डर भरी आवाज में कहा, जब हम समुद्र में जाएं और उस समय वह मुसलमान कहीं आ जाए तो क्या स्थिति होगी। कुंजन डर के मारे कांप गया। उसने कहा, हाँ हाँ कुछ भी हो सकता है। आंडी ने निराशा के भाव में कहा, सुनने में आया है कि वह अभी यहाँ आया करता है। कुंजन ने कहा, हैं ऐसी बात है, उसे खत्म ही क्यों नहीं कर दिया जाए। ऐसा करने से संकट बढ़ जाएगा ना मालिक, घर में औरतों को चैन नहीं है, सब घबराहट में समय बिताती हैं। जब नाव समुद्र में जाती है जब तक कि वह किनारे पर लौट नहीं आती तब तक सब व्याकुल रहती हैं। आंडी ने कहा, औरतों का कहना यदि ठीक है तो समुद्र माता ही बचाती आई हैं। यदि पुराना नियम चलता तो हम में से कोई भी अब तक जिंदा नहीं रहता, सबके सब समुद्र के भीतर ही सड़ गए होते और सिर्फ हड्डी रह जाती। वेलुत्ता ने पप्पू से सुनी हुई बातें दोहराई। 4-5 दिन पहले आधी रात के समय परी को वहाँ गाना गाते देखा गया था। इस तरह वह बराबर आया करता है। इतने पर भी पलनी के प्रति सबकी सहानुभूति थी। बेचारा पलनी, उसकी ऐसी तकदीर हो गई, कोई क्या कर सकता था। कुंजन ने घबरा कर पूछा, अरे इसके लिए क्या उपाय है। कुमारन की राय में एक ही उपाय था, वह था पलनी को नाव से अलग कर देना। यह राय सबको ठीक लगी, वही एक रास्ता था। कुमारन ने उस दिन बीच समुद्र में पलनी की नाव ले जाने की बात को शायद 100वीं बार विस्तार से दोहराया। उसने आगे कहा, उस पर फिर उस तरह का पागलपन सवार हो सकता है। मैं तो नाव में बराबर उसके चेहरे की तरफ देखता रहता हूँ, जिससे यह पता चल जाए कि कब उसका रंग बदलता है। सबने यह बात मान ली। पतवार उसके हाथ में न रहे, पर डांड भी कहीं गलत चला दे तो खतरा ही है ना। कुमारन की बात सबको ठीक लगी, लेकिन इससे सबको दुख भी हुआ। पलनी बचपन से ही कुंजन की नाव पर काम करता रहा है। शुरू में उसे जाल फैलाने के काम में लगाया गया था। बीच समुद्र में भी पलनी को काम में लगाने में किसी को संकोच नहीं होता था, क्योंकि उसे कुछ हो भी जाए तो उसके लिए दुखी होने वाला नहीं था। जाल फैलाने के काम से उठते उठते वह पतवार संभालने के काम तक आ गया। नाव पर पतवार संभालने का काम करने के लिए हमेशा उसे औरों से 2 रुपये अधिक ही मिलते थे। कुंजन ने सबसे कहा, कुमारन, पलनी के हाथ से पतवार ले लेने के बाद से आमदनी कम हो गई है ना? कुमारन ने यह मान लिया, लेकिन संकट से बचने के लिए उपाय ही क्या था? दूसरा कोई उपाय नहीं था। पलनी से यह बात कहे कौन, कहे कैसे? कुंजन यह नहीं कर सकता था, उसका मन तैयार नहीं होता था। उसने कुमारन से कहा, तुम लोगों में से कोई भी कह दे। कोई तैयार नहीं था, तब काम कैसे होता? करुत्ता ने एक सुझाव दिया, उसके आने के पहले ही नाव उतारकर चल दिया जाए। उसी तरह जरूरत पड़ने पर आदमी को भी बदला जा सकता है। कुंजन को यह तरीका मालूम था, लेकिन उस तरह निकाले जाने वाले आदमी पीछे मालिक से झगड़ते आते हैं। पलनी जब आएगा तब वह उससे कैसे मिलेगा, यह भी परेशान करने वाला सवाल था। लेकिन वही एक उपाय था, इसलिए सब नाव में काम करने वालों ने मिलकर ऐसा ही करना तय किया। उसके बाद सब लौट गए। कुंजन ने पलनी की जगह एक नए आदमी को रख लिया। पलनी रोज की तरह सवेरे उठकर समुद्र किनारे गया। तब तक नाव चली गई थी। उसने जोर से आवाज़ देकर पुकारा। उसकी आवाज़ एक गंभीर गर्जन की तरह गूंज गई। इतने जोर की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। पलनी को जब लगा कि वह जानबूझकर छोड़ दिया गया है, तब उसमें एक समुद्र की संतान की जो शक्तियाँ छिपी थीं, सब एक साथ जागृत हो गईं। उसके शरीर की मांसपेशियाँ अजीब ढंग से फड़कने लगीं। उसे उसके काम से रोका गया था। उसका शरीर समुद्र के तूफान और आंधी पानी से होड़ लगाने के लिए बना था। इतने दिनों से वह प्रकृति से होड़ लगाता आया है, अब उसे ऐसा करने से रोका जा रहा था। इस रुकावट से पलनी की शक्तियां जाग उठी। समुद्र में आने वाली हवा ने पलनी के गर्जन की आवाज़ को आगे के घरों तक पहुंचा दिया। नाव वाले उसकी पुकार सुन भी तो लेते तो क्या लौट आते? नहीं लौटते। जिस नाव को उसने प्यार किया था, वह समुद्र में काम करने की उसकी अपात्रता का प्रख्यापन करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पलनी की जागृत शक्तियाँ काबू में नहीं आती थीं। उस घटना का अर्थ वह जानता था। वह अपना हक पाने के लिए समुद्र में कूद पड़ा। मगर और शार्क की तरह वह पश्चिम की ओर बढ़ा। यह मल्लाह होकर, समुद्र की संतान होकर जीने के उसके आग्रह का फल था। एक उत्तुंग तरंग इतनी ऊंची की वैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी, उसके सिर के ऊपर से उठी और दूसरे ही क्षण उसने उसकी शक्तियों को निचोड़कर उसे एक गेंद की तरह तट की जमीन पर फेंक दिया। पलनी हार गया। वह उठकर कुंजन जाल वाले के घर की तरफ दौड़ा। उसे कुंजन से एक प्रश्न पूछना था, क्या मैं समुद्र में काम करने के लिए योग्य नहीं हूँ? कुंजन कोई जवाब नहीं दे पाने से परेशान हुआ। अरे वह बात झूठ है, सर्वथा झूठ है, गौतमा भ्रष्ट नहीं है। फिर भी सब ऐसा ही कहते हैं ना? क्रोध से भरे पलनी ने गरज कर कहा, ऐसा ही कहते हैं। और वह वहाँ से लौटकर चला गया। भाग 16। पलनी जब लौटा तब गौतमा घबरा गई। क्या बात है यह उसे मालूम नहीं था। उसने कारण पूछा। पलनी ने जवाब दिया, लोग कहते हैं कि तुम भ्रष्टा हो, इसलिए मैं समुद्र में जाने लायक नहीं रहा। गौतमा सुनकर स्तंभित रह गई। उसे दूसरों को भ्रष्टा कहते उसने सुना था, लेकिन पति के मुँह से उसने पहले पहल आज ही सुना। भले ही उसने अपनी तरफ से नहीं बल्कि दूसरों के शब्द ही क्यों न दोहराए हों। इस तरह करुतम्मा के कारण एक अच्छे मल्लाह को धब्बा लग गया। पलनी ने उससे पूछा, यह बात भूल कर कि तू एक मल्लाह की लड़की है, तू बचपन में उस मुसलमान छोकरे के साथ खेलने और हंसने क्यों गई? बात सही थी, लेकिन ऐसा सवाल अब तक किसी ने नहीं पूछा था। माँ ने शुरू में डांटा तो था, लेकिन इतने स्पष्ट और सीधे प्रश्न का सामना करने की उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। गौतमा व्याकुल हो गई। उस सवाल का मतलब वह समझ गई, लेकिन क्या जवाब देती? उसने अपनी गलती मान ली। उसने कहा, ऐसा हो गया, माफ करो। पलनी का सवाल सीधे गौतमा से नहीं था। उसने कहा, नहीं, तुम्हें कुछ क्यों कहना चाहिए, वह तुम्हारी गलती नहीं थी। गौतमा को जरा तसल्ली हुई, पति ने उसे माफ कर दिया, उसकी बात का वह विश्वास भी करता है। उसकी गलती सिर्फ सावधान न रहने की थी, वह एक बड़ी तसल्ली की बात थी। लड़की को उस मुसलमान के साथ खेलने कूदने के लिए छोड़कर अब बेटी भोगे माँ बाप को ही ना बच्ची की देखभाल करनी चाहिए थी। पलनी का गुस्सा इतने से ही शांत नहीं हुआ। उसने करुतम्मा की तरफ देखकर कहा, बाप ने उस मुसलमान छोकरे को अपनी बेटी दिखाकर और उसे धोखा देकर ही अपना नाव जाल बनाया होगा, बड़ा अच्छा धंधा था। पलनी का यह संदेह वास्तव में न्यायसंगत था। करुतम्मा ने पैसे का वरस पलनी से नहीं कहा था। करुतम्मा को लगा कि वह भी कह देना चाहिए था, मौका मिलने पर वह भी उसे कह देगी। पलनी ने पत्नी को चेतावनी दी, देख तेरे माँ बाप ने तुझे जिस तरह पाला है, तेरे पेट में जो है उसे भी वैसे ही पालना। लड़की हो तो उसे तट पर के किसी लड़के के दुख का कारण बना देना, सुना? करुतम्मा ने कहा, नहीं नहीं। वह बात समझ गई। उसने यह तय किया कि पेट में जो बच्चा है उसे वह कभी भी अपनी तरह नहीं भोगने देगी। उसने खुद कितना भोगा है, उसने काफी सबक सीखा है। जीवन की एक बड़ी घटना का वह सामना कर रही थी, फिर भी उसे एक बात से तसल्ली हुई। आज पलनी ने पहले पहल उसके पेट के बच्चे के बारे में चर्चा की, वैसे ही उसकी गलती के बारे में भी आज ही उसने खुलकर पहले पहल जिक्र किया। उसके बारे में जो बदनामी फैलाई गई है उस पर उसका विश्वास नहीं था। गौतमा के लिए यह कितनी बड़ी सांत्वना की बात थी। एक ही घर में रहते हुए भी पति को पत्नी के घर में रहने का ख्याल नहीं रहता था। करुतम्मा जब अपने को निस्सहाय पाकर उसके पास जाकर बैठती तब वह उसे लात मारकर हटा नहीं देता था, बस इतना ही। करुतम्मा इसे ही बहुत मानकर धीरज धारण करती थी। उसने पूछा, आगे हम लोगों का निर्वाह कैसे होगा? पलनी के सामने वह सवाल नहीं था। करुतम्मा ने बाकी लोगों को दोषी ठहराया। उसने कहा, बड़े उपद्रवी हैं सब, मुझे घर घर जाकर मछली बेचने का काम नहीं करने दिया और अब तुम्हें समुद्र में भी नहीं जाने देते। पलनी ने जीत पकड़ी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं मल्लाह हूँ री, मल्लाह की तरह गुजारा करूँगा और मल्लाह की तरह ही मरूँगा। करुतम्मा ने पलनी को अपने सामने मूर्तिमान पौरुष के रूप में देखा। परिश्रम से पुष्ट हुई उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं। करुतम्मा को लगा वह सब तरह से मजबूत एक मल्लाह के संरक्षण में है। पलनी ने अपना होठ काटते हुए कहा, अरे किसका अधिकार है यह कहने का कि मैं समुद्र में जाने योग्य नहीं हूँ? समुद्र में काम करके जीने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। समुद्र में जो कुछ भी है वह सब मेरा भी है, नहीं कहने का अधिकार किसको है? पलनी का मन अपने अधिकार बोध से लबालब हो गया था। अनंत रत्नाकर का उत्तराधिकारी था वह। मल्लाह कभी कुदाली चलाने और जमीन जोतने नहीं जाता रही, पलनी भी यह सब नहीं करेगा, यह निश्चित बात है। पलनी ने पत्नी को आश्वस्त करते हुए कहा, तू निश्चिंत रह, समुद्र की संपत्ति से पलनी का गुजारा होगा। समुद्र में जाल खींचने का वह समय था। 5 साल की उम्र से समुद्र में ही उसका जीवन बीता है। इतने समय में आज ही पहली बार बिना काम के वह घर बैठा रहा। पश्चिम की तरफ देखा तो 20 समुद्र में नावें पड़ी दिखाई दीं। उस दिन आइला और कुरिची मछलियों का बटोर था। पलनी अधीर होने लगा, क्या करे? गुस्से के मारे वह अपने आप बोलता रहा, उसका पौरुष जागता रहा। करुतम्मा की शक्ति भी जागी। पलनी मल्लाह था तो वह भी मल्लाहीन थी। उसे भी समुद्र के धन से जीना था। कोई भी मल्लाहीन नारियल का छिलका पीटकर और रस्सी बांटकर गुजारा नहीं करती। उसने पूछा, मैं मछली बेचने जाऊं? पलनी ने मना किया। उसने कहा, नहीं, तू घर में ही रह, भारी पेट लेकर बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ शुरू होने का समय अभी नहीं हुआ है। पलनी ने कहा, तेरा खर्च मैं चलाऊंगा, इसी विचार से मैं तुझे लाया हूँ। इतनी शक्ति मुझ में है, तू चुपचाप रहे तो काफी है। करुतम्मा यह आदेश पूर्ण रूप से नहीं मान सकी। फिर भी उस आदेश में एक बात छिपी थी। कसूरवार होने के कारण उसे अपने भविष्य के बारे में चिंता थी। पति अब उसे काम करने क्यों नहीं कहेगा, वह उसका भरण पोषण करेगा। उसके जीवन में यह दिन कभी न भुलाया जा सकने वाला था। यथार्थ में उसने उसी दिन पत्नी का सा अनुभव किया। अब उसे कमी किस बात की रही? ऐसी ताकतवर पति वाली दूसरी स्त्री उस तट पर कहीं नहीं गई थी। वे पति पत्नी के आपसी संबंध के बारे में एक स्पष्ट निश्चय पर पहुंच गए। एक ही बात अब बाकी रही। पलनी ने कहा, करुतम्मा, एक ही बात जरूरी है, तुझे अपनी मर्यादा का पालन करना है, तब इस तट पर मल्लाहिन के तौर पर तुम्हारी गुजर हो जाएगी। इस तरह पलनी ने स्पष्ट रूप से एक मांग की। अब तक करुतम्मा पैर पकड़कर या छाती पर सिर रखकर वचन देती रही थी। अपनी तरफ से पलनी ने इसके पहले मांग नहीं की थी। वास्तव में आवश्यकता न होने पर भी इस तरह की मांग करना पति का हक होता है। शायद ऐसा न हो तो पत्नी की पूर्ण तृप्ति नहीं होती। ऐसी मांग विवाह संस्कार में भी शामिल रहती है। तुम्हें मर्यादा और नियम का पालन करना है, यह मांग पति प्रेम की एक अविभाज्य कड़ी है।